नमः स्वामी बोलो श्री सतगुरु महाराज बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजी खोलिया मुसाफ मगज ए बात साहेबे छत्र साल सो कही घर इमाम बुलंदी छत्ता को दे घर इमाम नौवीं आगे अरफाईद कही ले दसवीं आगु सब लीला भई मंजलें सब ग्यारी के मध सो कहे कुरान विवेक कही विदर प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी इन प्रकरणों में जो कल एक हो गया और आज है आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के दुनिया में जाहिर होने की तारीखें हैं। कुरान में लिखा था कि जब अरफा ईद आएगी उनकी वो ईद होती है जो रोज़े रखने के बाद होती है, उस ईद को अरफा ईद कहते हैं। तो आज दिन तक दुनिया में जो रोज़े रखे हुए थे अर्थात जिनको भी पारब्रह्म अक्षातीत की पहचान नहीं थी और झूठ के देवी देवतों को ही परमात्मा खुदा मान करके बैठे हुए थे, क्या हुआ कि नौवीं आगे अरफा ईद गई। ये सदियों का वर्णन है, अपना नहीं, मुसलमानों का। कुरान के हिसाब से हिजरी सम्मत उसको कहते हैं, मुसलमानों का। और वो मोहम्मद साहब के शरीर छोड़ने के बाद से उसी डेट से शुरू हुआ था। तो मोहम्मद साहब को तन छोड़े हुए जब नौवीं सदी बीत गई और दसवीं को 10 साल बाकी रहते थे तो क्या हुआ, ईद का चंद्रमा निकला। समझे ना, कौन सा चंद्रमा निकला, श्री धनी देवचंद जी श्यामा महारानी संसार में आ गए, ईद हो गई। जैसे बड़े कठिनाइयों में मुसलमान 30 रोजे रखते हैं तो जब चंद्रमा निकलता है, हालांकि रोशनी नहीं देता, बस चंद्रमे को देख के दूसरे दिन वो खुशियाँ मनाते हैं कि चंद्रमा आ गया, ईद हो गई। तो ये वो है कि नौवीं सदी से पहले तक कोई भी हिंदू मुसलमान को ये पता ही नहीं था परमात्मा कहते हैं। ये जरूर कहते थे परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, खुदा एक है, पता कुछ नहीं। क्यों, पता लग जाता तो मोहम्मद साहब की आज समाधि जो है उन्होंने पता नाम क्या रखा हुआ, बैत अल्लाह। हमारा मदीने में क्या है, बैत अल्लाह, समझे, यानी अल्लाह का घर। कितना अंधकार है एक कब्र को ये मानना कि ये अल्लाह का घर है। उसके बाद ये अंधकार जो हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा और वो लोग कब्रों की पूजा करते थे। भारतवर्ष में एक अजमेर स्थान भी है और वहाँ भी खाजा करके एक पैगंबर हुए हैं, उनकी समाधि। आप लोग कभी जाने का अवसर मिले तो दर रोज गुलाब के फूल मनो चलते हैं और वहां जाके लोग अपनी शरीरक फरियादें मानते हैं, पूरी होती। इस तरह से यूपी के अंदर भी है, दिल्ली में चितकबरी कब्र है, कब्रों की पूजा वो ज़्यादा कहते हैं। और बड़े बड़े को उनके पीर पैगंबर भी हैं ना, तो उन पर भी वो दिए जलाते हैं, और कब्रों पर मानते हैं, और हिंदू लोग भी कई उन्हीं कब्रों को मानते हैं। वीर मुर्शिदों की जाके कब्रों पर फूल चढ़ाना, कपड़े चढ़ाना और मन्नते मानना। अब ये सोचे कोई कि क्या मिट्टी जो है वो हमें कुछ दे दे। तो अकबर हमेशा समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसका कोई इसमें प्रसंग नहीं है। बीरबल और अकबर की चलती ही रहती थी। तो बीरबल कहता है अकबर, दुनिया देखा देखी नरक में जाती है। भाई वो सब जा रहे हैं, हम भी चलें, कहाँ जाएं? सब जा रहे हैं, हम भी चलें। ठीक, बादशाह कहता है देखो बीरबल, तू हर वक्त जो है ना ऐसी बातें मत किया कर। कहने लगे बादशाह अच्छा करके दिखाऊंगा। दो चार महीने बीत गए, बादशाह को वही बात थोड़ी पड़ी है, बादशाह को हजारों बातें और मगज में रहती। तो वहां एक गधा मर गया। तो बीरबल ने कहा कि देखो भाई इसे बाहर नहीं फेंकवाना, इसके डेड बॉडी को कब्र बना दो और रातों रात उसकी कब्र बना दी। किसी को पता नहीं चलने दिया कि इसमें गधा है कि कौन है। अब सवेरे उठ के फर्स्ट क्लास बीरबल उस पर जो है फूलमाला चढ़ा रहा है और बड़े बड़े बढ़िया शॉल चादरें चढ़ा रहा है। अब जब बीरबल चढ़ा रहा है, लोग आए कहने बीरबल यहाँ कहाँ है, तो पता नहीं पीर साहब की समाधि और जो इस पर वो करेगा सब मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, करते करते जिसका कोई बीमार हो जाए, किसी का कुछ और हो जाए, वो जाए पीर साहब की समाधि पर चढ़ावे मत्था टेक के, हे पीर साहब हमारा ये है, हे पीर साहब हमारा ये है, दिया जला है। तुकबंदी से कई ठीक भी हो जाते थे, गुजारे तो नहीं है कि बिना ठीक हूं। ये बात बादशाह के दरबार में पहुंच गई। वजीरों ने कहा कि हजूर कोई पुरानी पीर साहब की कब्र थी और बीरबल रोज वहां जाता है, पगे लगता है, दिया जलाता है। तो अकबर कहता है भाई बीरबल गलत काम नहीं कर सकता, समझे। तो बाई चांस थोड़े दिन के अंदर अकबर का एक ही बेटा सलीम था बीमार पड़ गया। अरे तन है, कभी भी किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, ज्यादा ही बीमार हो गया। वैद हकीमों ने भी जवाब दे दिया, बीरबल को बुलाया, भाई बीरबल क्या करें, एक एक बच्चा है, कुछ तो हुई बता। कहने के हजूर पीर साहब के मकबरे के ऊपर कब्र है, आप भी जाओ दुआ कर दो पूरी हो जाएगी। अब वो भी गया, अकबर भी जाकर के पगे लगा, हार चढ़ाए, चादर चढ़ा दी, पानी लाके पिला दी, भाई चांस लड़का ठीक हो गया। कहते हैं हजूर कभी मेरी तुम्हारी बात हुई थी कि दुनिया देखा देखी नरक को जाती है, जिस पीर साहब की पूजा करके आया ना इसके अंदर मैंने गधा मरा हुआ दबाया था। कहते हैं आइए ना तशरीफ लाइए। अब जाए उसको घरा तो अंदर गधे की डेड बॉडी पड़ी थी। कहते बोली है दुनिया देखा देखी नरक में जाती। कहने लगे अच्छा नहीं विश्वास आया तो और लो मुझे 6 महीने की छुट्टी दे दो। जंगल में चला गया और भगवे कपड़े डाल लिए, 6 महीने में दाढ़ी तो हो ही जाती है, और रख रुक के और सब कुछ भेष भूष बदल के, और 6 महीने के बाद आया। बादशाह बड़ा व्याकुल था, बीरबल 6 महीने की छुट्टी लेके गया, काम सारा गड़बड़ हो रहा है, आना चाहिए, वो तो साधु बना बैठा है। और क्या किया, ध्यान दो समझने की बातें। बाहर गांव के बाहर गांव वाले गंदे कपड़े, गंदगी सा जो घर का कूड़ा करकट होता वहाँ फेंकते रहते, कुरड़ी, तो वहाँ से गंदे कपड़े जो बच्चों की पॉटी वगैरह के साफ कर फेंक देते हैं उनको लाया उठा के। सीस आके एक गोदड़ी बना ली जो साधु लोग गलों में डालते हैं, सीस आके वो बैठ गया धुना रमा के। अब साधु महात्मा को देख करके किसी ने नहीं पहचाना कि बीरबल है, ऐसा भेष बना लिया उसने। तो सब आए, कोई फल रखने लगा, कोई मिठाई रखने लगा, साधु बाबा हैं पगे लगने लगे। तो आगे कहते हैं महाराज हमें ये कष्ट है, कहने लगे भी मैं वो साधु नहीं, मैं दुनिया के दुख दूर नहीं कर सकता, अगर किसी ने परमात्मा का देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। कहने लगे हिंदू हो जिस भगवान को कहेगा इसमें से दिखेगा, और मुसलमान को अल्लाह ताला दिखेगा। बात बढ़ते 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 वजीरों तक चली गई, और वजीरों के बाद बादशाह को भी खबर लग गई भी ऐसा कोई साधु आया है जो अल्लाह ताला को दिखा सकता है तो चलना चाहिए। बादशाह वजीरों को लेकर के गए बीरबल, उन्हें तो नहीं पता वो भेष ऐसा बना लिया था बार बार बादशाह भी ना पहचान सका। हे फकीर बाबा, ये सारे दुनिया वाले कहते हैं, मेरे पास रिपोर्ट पहुंची है, क्या कहते हैं ये सच्चा है? कहते हैं जी पहले सबसे जो यहाँ का बादशाह है ना उससे मेरी मुलाकात करा दो, बीरबल पहचान गया कि अकबर आया, तो पहले मैं उसको अल्लाह के दर्शन कराऊंगा, फिर जिसको वो दिखाना चाहेंगे दिखा लें। तो अकबरी कहते हैं अच्छा परसों मैं बादशाह को कह दूंगा, तुम्हें दरबार में बुलाया जाएगा, वहाँ आ जाना। अच्छा हजूर ऐसा ही करूँगा, पर बादशाह को कह दो। अब बादशाह ने बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े उमराव, बड़े बड़े भक्तजन, बड़ों बड़ों को दरबार में बुलाया, जनता भी आ गई, वही प्रभु के दर्शन होते, अल्लाह के दर्शन होते, चलना चाहिए। दरबार लग गया, जाओ भाई बुला लो। तो गोदड़ी लेके आ गया बीरबल, तो बादशाह ने सोचा भी कोई रेस्पेक्टेड पर्सन इस गांव का होना चाहिए, उसको पहले बुलाएं। तो देखा सारी जनता में से कौन सच बोलने वाला एक रेस्पेक्टेड आदमी है, तो राम का वो भक्त था। अब उसको कहा कि देख भाई तू सच्चा आदमी है और सारे गांव में तेरा नाम है कि वो राम का भक्त सच्चा है, दान करता है, तू पहले गोदड़ी पहन के देख राम भगवान के दर्शन होते हैं। तो उनका बादशाह सलामत ये सोच लो जो तो अपने पिता का पुत्र है उसको भगवान नजर आएगा, जो हरामी होगा उसको नजर आएगा। ठीक है भाई ये तो बात, इससे ज्यादा और कौन अच्छा आदमी होगा, परिवार है, खानदान वाला है, वडिल लोगों का ये है वो है, ठीक है। अब हो गया ये समय नाग के पास ही लाया तो सोच लो क्या हुआ, दुर्गंधी से भरा हुआ था, गले में डाल तो ली एक मिनट सोचता है अगर मैं कहूँ मुझे भगवान नजर नहीं आता तो मेरा तो हरामी हो जाएगा, माँ पर भी कलंक लगेगा। आहा राम भगवान, आहा अयोध्या के नजारे, ओ सीता महारानी तख्त पे बैठी है, आहा हनुमान जी भी पास खड़े हुए हैं, क्या भरत है, वो बात लगा नहीं मजा उतार के रख। अब सारी जनता ने कहा कि भाई राम भगवान के दर्शन हुए हैं, बात तो सच्ची, और ये आदमी इतना भक्त है, गंगा जी जाता है, माला फेरता है, ये करता है। बादशाह ने एक और आदमी को खड़ा किया, वो मथुरा वृंदावन जाया करता था, वो आया, उसने भी डाली जैसे ले, नाक तो सड़ गया भाई, बदबू दुर्गंधी दुर्गंधी, जब कुरड़ी के ऊपर से उठाए हुए गंदे कपड़े थे उसने भी डाली, और लगा सोचने ले भाई मैं तो मर गया, उसको भगवान नजर आया है, मैं कह दूं कि नजर नहीं आया तो हमारा तो खानदानी तबाह हो जाएगा। आह ओ बंसुरी वाले, ओ कृष्ण कन्हैया, क्या स्वरूप है तेरा, आ कृष्ण राधिका जी का झूला, जय हो भगवान की जय हो। अच्छा वो भी मथुरा वृंदावन हुआ है, अब उतार दी वो स्तर के बाद है। एक दो को और जो अपने अपने हनुमान जी के भक्त थे उनको डाला, बजरंग बली, उसने मैं मंगा ली। अब बादशाह कहता है भाई ए वजीर, तू मुसलमान था, चलो सबने देखा है, अब तू भी पैर। अब वजीर आया, अब जो कुछ होना था उस गोदड़ी में तो हुआ ही भाई, तो अब कहता है अगर मैं कह दूं मुझे अल्लाह ताला अर्श अजीम नजर नहीं आता है तो मुझे तो ये कह देगा हरामी है, इसको दरबार से निकाल दो। अब उसने भी जो मुल्ला उल्ला उससे सुन रखा था, गोदड़ी पहनी, आहा वो मक्के मदीने वाले, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श अजीम के बाहर नहरें, वो गलियां जो कुरान में से बर रखा था, उसने भी कह दी होता। अब वो जो साधु था बीरबल कहता है हजूर अब आप भी पहन ली। अब बादशाह आया, उसने भी पहनी, कहता भाई जनता मेरी राय, चाहे मुझे हरामी करो और चाहे कुछ भी कहो, ये रखे तो नरक की मारी हुई गंदगी बदबू से सड़ रही है। क्यों रे वजीर? कहते हजूर मेरे साथ भी यही हुआ है, पर मैं करता क्या, अगर मैं कह देता खुदा दिखता नहीं है तो आप तो मुझे अभी दरबार से निकाल देते। फिर वो आदमियों से पूछा हनुमान वाले को, कहता है हजूर भरी सभा के अंदर और दो आदमियों ने कह दिया भगवान नजर आता है, तो मैं कहता कि मेरा भगवान नजर नहीं आता तो फिर मैं क्या करता, तो सारे गांव के अंदर तो हमारी नाक कर देते कि ये गंदे खानदान का आदमी है, ऐसा परिवार वाले बंडल खोटे थे। पहले से पूछा क्यों भाई तुझे राम भगवान नजर आए, कहते हजूर क्या इस नरक में से राम भगवान नजर आने थे, पर तुमने भरी सभा में कह दिया वडिल भक्त है तो उसका मान तो रखना पड़ना था, यह है दुनिया देखा देखी नरक में जाती है, तो इसलिए अब ये जो दुनिया इस भ्रांतियों में पड़ी हुई थी, हिंदू सालग्राम को गंगा जी के सफेद पत्थर मिला तो वो हो गया विष्णु भगवान, सालग्राम विष्णु भगवान को कहते हैं, और काला पत्थर आया तो बन गए महादेव जी महाराज। इसी तरह हिंदू ही नहीं मुसलमान भी भटके, आज भी मुसलमान भटके हुए कब्रों को पूजते हैं, और इस तरह से हो रहा था अंधेर, तब सतगुरु देव चंद जी संसार में उतरे। साल 990 मास नव हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजी इसको कहते हैं ईद का दिन। चंद्रमा निकला भी रोशनी नहीं हुई, रोशनी 11वीं सदी में होनी, 40 साल में जब राजी महाराज दर्शन देते हैं तब रोशनी शुरू हो जाएगी। अभी चंद्रमा निकला है तो नौवीं आगे अरफा ईद कही और ले दसवीं आगे सब लीला भाई। नौवीं आगे, नौवीं सदी चल रही थी ना, अब दसवीं पूरी हो गई, 990 साल हो गए तो दसवीं पूरी आ गई, अब लीला होनी शुरू हुई। जब भया वर्ष 11 वर्ष में शुरुआत होते ही दसवीं सदी की 11वीं के और काम शुरू हो गया, फिर तारतम भी 11वीं सदी में, और फिर स्वामी जी का मेराय ठाकुर का जन्म भी 11वीं सदी में, और फिर हफ्से में भी राज्य का एक तन को छोड़ के दूसरे तन में आना 11वीं। अब एक एक अर्थ समझते हैं, मजले सब 11 के मध्य, अर्थात जो भी कार्य ईसारू अल्लाह और इमाम मेहंदी ने करना है 1735 में 11वीं सदी थी, 1090 चर्चा हो चुकी अभी तक सामने, इधर 1735 थे हमारे और हिजरी सम्मत कौन सा था 1090, तो मंजिलें सब 11 के मध्य, सो कहे कुरान विवेक कई विद। ए विवेक, मैंने अच्छी तरह से कुरान में ये प्रसंग लिखा है कि ईसा रू अल्लाह दसवीं में आएंगे, दो जामे पहनेंगे, ईसा रू अल्लाह पहन सी जामे, दो जामे का मतलब दो तनों में बैठकर उनकी लीला पूरी होगी 11वीं सदी के अंदर। ए 11 बीच बड़ो विस्तार, एक तो ये सारा विस्तार हुआ, प्रगटे बुलंद सब सिरदार, अर्श से सारी आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि भी संसार में प्रकट हो गई। सब न्यानते सिफते दे सितार, और राज्य में रहने स्वामी जी ने मोमनों को सब सिफते भी दी, और जो परम धाम से न्यामत लाए थे, तोहफा लाए थे, कुरान में लिखा है, वो ये वाणी भी मोमनों को दे दी। उतरियां आयतें जो उस्तवार, उतरियां कहीं नहीं, अंदर बैठ के जो राजीव महाराज ने आयतें, किसको कहते हैं, चौपाइयों को, जैसे जैसे उतरते गई ये स्वरूप साहब बांध के मोमनों को मिल गया। छिपा था बुजुर्ग वक़्त, आज दिन तक किसी को पता नहीं, मुसलमानों को अब भी नहीं पता चला कि भाई फरदा रोज क़यामत हो गई है और अल्लाह ताला दुनिया में आ गए हैं, छुपा पड़ा था, कोई नहीं जानता था। आज भी मुसलमानों को पूछो कहते नहीं अभी अल्लाह ताला कहाँ गए, और वहां लिखा है 11वीं सदी में आएंगे। इसी तरह से हिंदुओं को पूछो कि कल की अवतार हो गया, अरे अभी कहाँ हो गया, वो तो कलयुग के अंतिम चरण में आना है, और अभी तो कुल 5,000-5,500 साल ही हुए, ध्यान दो समझने की बातें। तब स्वामी जी ने ये भी समझाया है कि एक ग्रहण यदि लगता है तो कलयुग की 125 वर्ष आयु कम हो जाती है, सतयुग त्रेता की आयु कम नहीं होती, कलयुग की आयु जैसे जैसे पाप होते जाते हैं कटती जाती है, तो फिर 1200 कितने ग्रहण लग चुके थे जब स्वामी जी आए, तो वो 1735 में कलयुग की पूरी आयु हो गई थी। फिर कहोगे जी ये बढ़ कैसे गई, रात रखी कछु खेच के सो भी वास्ते, समय पूरा हो गया था जितना लिखा था कि कितना आयु होती है कलयुग की, पूरी हो गई थी, 432,000 वर्ष होती है वो ग्रहण लग लग के, और बाकी ये टोटल लगा तो कबीर जी ने भी कहा था जब बीतेगा 5,005 तब आएगा पारब्रह्म सच। 11वीं सदी मुसलमानों के यहाँ लिखी है, हिंदुओं के अंदर साका सालवान का 1600 लिखा है, सब मिला के देखो तो हरिद्वार में एक डेट बन जाती है। ये हिसाब भी वितक साहब में लिखा हुआ है। अभी स्वरूप साहब का जो टीका हो रहा है ना, उसमें सब डेटे छिजरा मिला करके छपा हुआ है और उसको पढ़ सकते हो। छिपाता बुजुर्ग वक़्त जाहिर हुआ रोज दिखाई क्यामत। अब लिखा है कि क्यामत जाहिर होगी, क्यामत आएगी नहीं। और मोमिन और मुसलमान क्या समझते हैं कि खुदा तो तब जब आएगा तो ब्रह्मांड का परलय हो जाएगा। इसलिए मुसलमान क्यामत के नाम से डरते हैं। क्यामत का अर्थ क्या है कि जब स्वामी जी आएंगे, आ करके परम धाम की वाणी लेकर के आएंगे, तो जिन सुंदर साथ को, जिन दुनिया वालों को पहचान हो जाएगी, वो देवी देवता झूठ की पूजा को छोड़कर सत्य चेद आनंद राज्य की पूजा करेंगे, वो जन्म मरण से छूट के अखंड हो जाएंगे, कायम हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे, कायम हो जाना। स्वामी जी के आने पर ये आवागमन के चक्रों को जो बंधन हैं वो छूट जाएंगे, और जैसे जैसे दुनिया पहचानती जाएगी वो अखंड जन्म मरण से छुटकारा मिलता जाएगा। अब अग्यारी सुख चले ले चले सरदार, पीछे बारी में जले बदकार। कि जिन्होंने ग्यारहवीं सदी के अंदर स्वामी जी को पहचान लिया वो सरदार सखिया, और यकीन कर लिया तो साक्षात धाम का धनी मानकर सेवा ले ली और अर्पण हो गए। ठीक है, पीछे भले वो किसी तन में भी बैठ के लीला करें, पर साक्षात उसी तन से जाहिर होना था कि मैं ही अक्षरा तीत हूं और मैं ही अल्लाह ताला। तो जिन्होंने उस समय पहचाना, जैसे लालदास जी, छत्रसाल जी और बड़े बड़े मोमनों के नाम आते हैं, वो सरदार। पीछे बारी में जले बदकार, जिन्होंने पहचान नहीं की और शरीर स्वामी जी ने छोड़ दिया तो फिर पश्चाता है। जैसे औरंगजेब की चिट्ठी भी छपी है कि ओ दारा, मेरे घर खुदा चल के आया था, मैंने उनकी पहचान नहीं। ये है कि जो ईमान नहीं लाते फिर पश्चाताप कहते हैं, उसको बदकार कहा है। पता तो उनको लग गया था भाई इस तरह से अक्षत। जैसे हरिद्वार के अंदर सब धर्माचारियों के सामने स्वामी जी जाहिर हुए कि नहीं हुए, लेकिन किसी ने भी यकीन लाके तारतम नहीं लिया, उनको बदकार कहा है। कि जो गुमान अहंकार में मरते फिर रहे वही लोग बदकार हैं।